सत्यवचन। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हमने मनुष्य की सृष्टि के विषय में देखा था कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना कैसे की। आज हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे और इस अध्ययन में हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे, अर्थात हमारा विषय होगा सर्प का परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करना, स्त्री और पुरुष का परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना, भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना, छुटकारे के सिद्धांत का परिचय आदि। मित्रों, इससे पहले कि हम इन विषयों पर विचार करें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस अध्ययन में सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि हम सब आपके जीवित वचन से सीख सकें और आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। जो दुख और परेशानी में हैं, उनकी भी आप सहायता करें, ताकि वे भी इस वचन के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम उत्पत्ति की पुस्तक के तीसरे अध्याय में आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल का यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूँ कि सभी रूढ़िवादी व्याख्याकर्ता इसे इसी दृष्टिकोण से देखते हैं या स्वीकार भी करते हैं। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस ने कहा है कि अध्ययन तीन बाइबल पुस्तक की केंद्र बिंदु है। यदि आपको इसमें कोई संदेह है तो कृपया आप उत्पत्ति की पुस्तक के एक और दो अध्याय को पढ़िए, फिर तीसरे अध्याय को मत पढ़िए और तब 4 से 11 अध्याय तक पढ़िए, और आप पाएंगे कि इनके बीच में एक बड़ी खाली स्थान या खाई है जिसे भरने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो जरूर हुआ है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि उत्पत्ति एक और दो अध्याय में मनुष्य निर्दोष और सब कुछ परिपक्व है, और यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर के बीच अच्छी संगति है। परंतु जैसे ही आप अध्याय 4 से आरंभ करके 11 अध्याय तक पढ़ते हैं, तो आप वहाँ पर ईर्ष्या, क्रोध, हत्या, झूठ, मूर्खता, भ्रष्टाचार, विरोध की भावना और न्याय को पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये सब कहाँ से आए और कहाँ से आरंभ हुए, पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वास्तव में मैं नहीं सोचता कि पाप की उत्पत्ति या सृष्टि उत्पत्ति की पुस्तक के तीसरे अध्याय से हुई है, जैसा कि लोग सोचते हैं कि पाप यहीं से आरंभ हुआ है। मैं आपको एक दूसरा कथन प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो अध्याय 3 के विषय में कहा गया है। यहाँ पर हम उन उद्गम की पीछा कर रहे हैं जो बहुत सी नदियों का दैविक सत्य है। यहाँ पर एक महान नाटक खेला गया है जो मानव इतिहास के नाट्य मंच पर खेला गया है, जो अभी 6000 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम वर्तमान पाप से गिरने और हमारे समय के लोगों की विनाश के दैविक वर्णन को पाते हैं। यहाँ पर हम हमारे शत्रु के सूक्ष्म युक्ति को सीखते हैं, और हमारा शत्रु शैतान है। यहाँ पर हम मनुष्य के संपूर्ण धार्मिकता की पथ पर चलने की शक्तिहीनता को भी देखते हैं। जब दैविक अनुग्रह से उसे रोक दिया गया, तो यहाँ पर हम पाप के आत्मिक प्रभाव को देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग जाना चाहता है। यहाँ पर हम परमेश्वर के स्वभाव को पापबोध पापियों के प्रति देखते हैं। यहाँ पर हम मनुष्य के स्वाभाविक आदत पर ध्यान देते हैं जो स्वयं के नैतिक शर्मिंदगी को छिपाते हैं, अपने संपूर्ण हाथ के कार्यों के द्वारा इसे छुपा कर रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि अनुग्रहकारी व्यवस्था जिसे परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है, यहाँ पर एक अद्भुत भविष्यवाणी की शुरुआत होती है जो पूरे पवित्र शास्त्र में मिलती है। यहाँ पर हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते सिवाय इसके हमारा भी एक प्रतिनिधि हो। मित्रों, हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न करता है, और इस अध्याय के पहले भाग में हम मनुष्य की परीक्षा के विषय में देखेंगे। उत्पत्ति 3:1 में लिखा है, उत्पत्ति 3:1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से फल ना खाना। मित्रों, यहाँ पर अब एक प्रश्न उठता है कि परीक्षा क्यों? यदि हम मुड़कर कुछ क्षण के लिए इस अध्याय के 1-2 को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को निर्दोष बनाया, परंतु मनुष्य धर्मी नहीं बनाया या रचा गया। अब धार्मिकता क्या है? धार्मिकता निष्कपटता या निर्दोषता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि परीक्षा आपको बढ़ा सकती है या तो नष्ट कर सकती है। इन दोनों में से एक काम अवश्य कर सकती है। मित्रों, अदन की वाटिका तापगृह नहीं थी और न ही मनुष्य तापगृह का प्राणी था। मनुष्य के स्वभाव को बढ़ाना था और यह सिर्फ परीक्षा की उपस्थिति में ही हो सकता था। मनुष्य एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के लिए रचा गया और वह परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए और दैविक शासन के अधीन रहने के लिए बनाया गया। मित्रों, मनुष्य ने अपनी सृष्टि स्वयं से नहीं की, और मैं नहीं सोचता कि कोई यह दावा करता है कि उसने अपने आप को बनाया है, परंतु परमेश्वर ने उसे बनाया है और परमेश्वर इच्छाधीन नहीं था जब उसने इस परिस्थिति में मनुष्य को रखा। उसने मनुष्य से कहा, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17 में हम इसे पाते हैं। इस पद से यह स्पष्ट होता है कि उस वाटिका में सिर्फ यही पेड़ खाने के लिए नहीं था, अर्थात और भी फलों के पेड़ थे। यह बहुत ही इच्छाधीन होता यदि मनुष्य भूख से मर जाता, यदि किसी पेड़ से फल ना खा पाता, और यदि उससे यह भी कहा जाता कि यदि वह इस फल में से खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। अदन की वाटिका में अनगिनत पेड़ थे जिसमें फल लगते थे, ताकि मनुष्य को इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए हम पाते हैं कि मनुष्य एक जिम्मेदार सृष्टि या रचना के रूप में हमारे समक्ष आता है। मित्रों, इस अध्याय के पहले पद में ही हमें सर्प का परिचय करा दिया गया है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक प्रश्न कारण के साथ पूछा जा सकता है कि वह संसार में कहां से आया, वह अदन की वाटिका में किस ओर से प्रवेश किया। मित्रों, इन प्रश्नों के उत्तर में मैं जहां तक परमेश्वर के वचन से बता सकता हूं कि सर्प वहां पर रेंग कर या फिसल कर चलने वाले सृष्टि के जैसे नहीं था। वास्तव में हमें यह नहीं बताया गया है कि वह वहां कैसे आया, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वह वहां था। परमेश्वर के वचन ने इस महान विचार को छोड़ दिया है। सर्प एक सृष्टि था और हो सकता है कि यह शैतान के लिए प्रयोग किया गया हो और शैतान उसे उपयोग किया हो। मित्रों, क्या आज शैतान इसी नियम या विधि को प्रयोग में नहीं लाता है? पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थ के वासियों को अपनी दूसरी पत्री के 11:14 में इस प्रकार लिखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बाइबल की अन्य पुस्तकों की अपेक्षा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक शैतान के बारे में सबसे अधिक बताती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12:9 में हम पढ़ते हैं, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है, और जो संपूर्ण संसार में भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ उसके दूध भी गिरा दिए गए। यह सृष्टि सांप के जैसे रेंगकर चलने वाला सांप नहीं था, जैसा कि आज हम लोग सोचते हैं। परमेश्वर का वचन उसके तस्वीर को वैसा नहीं देना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है, पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यह एक सृष्टि है जो आश्चर्यजनक सामर्थ के साथ है। उत्पत्ति की पुस्तक में उसके सृष्टि या उद्गम का कोई भी उल्लेख नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय में हमें इस सृष्टि के उद्गम के बारे में मिलेगा, और यह भी बताया गया है कि वह कैसे इस प्रकार की सृष्टि बन गई जो अभी है। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं तो हम इस प्रकार पाते हैं, स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में से जो वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में सर्प स्त्री के पास ही क्यों गया, वह पुरुष के पास क्यों नहीं गया? मित्रों, जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उसने उससे कहा था कि वह वाटिका के वृक्ष के सभी फल खा सकता है, परंतु एक वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था। स्त्री की रचना अंत में हुई और इसलिए उसे जो संदेश मिला था वह दूसरों के द्वारा अर्थात मनुष्य से मिला था, इसलिए सर्प सबसे पहले स्त्री के पास गया। मित्रों, मैं ऐसा सोचता हूं कि स्त्री को पुरुष से भी अच्छा बनाया या रचा गया था, या इसलिए कि उसके स्वभाव में अधिक तरस और सहानुभूति थी, और संभवतः हो सकता है कि वह पुरुष से अधिक सलाह देने और लेने में खुली थी। वास्तव में मैं सोचता हूं कि स्त्री के पास एक स्वभाव है और वह है पुरुषों से भी अधिक जिज्ञासु होना। आज स्त्री ही है जो गलत शिक्षाओं के समूह में उपासना और वाद के लिए पुरुषों से भी अधिक संख्या में जाती हैं और पुरुष को भी इसके लिए मार्गदर्शन करती हैं। अंततः बहुत सी गलत शिक्षा व वाद विवाद के केंद्रों के संस्थापक स्त्रियां ही हैं। शैतान जानता था कि वह क्या कर रहा है। कृपया ध्यान दीजिए कि उसने क्या किया। जब वह आया तो उसके पास एक अति सूक्ष्म नियम था। उसने स्त्री से यह प्रश्न पूछा जो परमेश्वर के वचन में संदेह उत्पन्न कर दिया, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? उसने उसके मन में संदेह को उत्पन्न कर दिया और वह उसे उसकाया। स्त्री ने उत्तर दिया, वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु इस वृक्ष के लिए परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर स्त्री ने बढ़ाकर बात कही, क्योंकि कहीं पर ऐसा नहीं मिलता है जहां पर परमेश्वर ने कहा कि मत छूना। आगे हम देखते हैं कि सर्प परमेश्वर के वचन का इनकार करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 4 और 5 पद, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। यहां पर हम देखते हैं कि तुम नहीं मरोगे कहने के स्थान पर उसने प्रभावपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया है, तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, क्योंकि वह पूर्णतया असंभव है। वह परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की अच्छाइयों को प्रश्न करता है। यदि परमेश्वर भला है तो उसने इन रुकावटों को क्यों रखा या मना क्यों किया? सर्प यह लागू करता है कि परमेश्वर धर्मी नहीं है जब वह कहता है कि तुम नहीं मरोगे, और वह परमेश्वर की पवित्रता पर प्रश्न उठाता है यह कहते हुए कि परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। हम हव्वा की बातों को देखते हैं कि वह परमेश्वर के वचन में अपनी ओर से जोड़कर कहती है, उदारवादी और नास्तिक भी परमेश्वर के वचन में से लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसके विरोध में उन्हें चेतावनी दी है। मित्रों, गलत शिक्षा के समूह और उपासक यहाँ तक कुछ रूढ़िवादी परमेश्वर के वचन में जोड़ते हैं और परमेश्वर इसके विरोध में चेतावनी देते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो यह कहते हैं कि हमारा उद्धार व्यवस्था के द्वारा है। वे वाद विवाद करते हुए कहते हैं कि हाँ, उद्धार विश्वास के द्वारा है, परंतु विश्वास के साथ और कुछ करना चाहिए, और वे किसी भी वस्तु के साथ आने के लिए सुयोग्य हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6:29 में, यूहन्ना 6:29, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो। मित्रों, वास्तव में यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे देखते हैं कि सर्प बहुत ही सूक्ष्म रूप से परमेश्वर का विरोध करता है और परमेश्वर के वचन के बदले में अपने वचन को रख देता है। रोमियो की पत्री हमें आज्ञाकारिता और विश्वास की सत्यता सिखाती है। विश्वास आज्ञाकारिता की ओर बढ़ाता है और अविश्वास अनाज्ञाकारिता की ओर ले चलता है, और संदेह हमेशा ही अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि स्त्री और पुरुष ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आइए हम उत्पत्ति 3:6 को पढ़ें। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शैतान ने जो निवेदन स्त्री के सामने रखे थे वे बहुत ही रुचिदायक थे। यह अपील शरीर के लिए था, वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा था, परंतु वह सब कुछ नहीं है। यह वह वस्तु नहीं है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह आंखों के लिए लुभावना था और यह अपील मनुष्य के मनोविज्ञानिक क्षेत्र के लिए अर्थात मस्तिष्क के लिए था तथा बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य था, और यह अपील मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के लिए था। प्रिय मित्रों, आप पाएंगे कि यही और इसी प्रकार की परीक्षा शैतान ने प्रभु के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ भी किया, जब वह निर्जन प्रदेश में था। आप इसे देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 में और मार्कुस रचित सुसमाचार इसके 1 में और लूका के 4 में। सर्वप्रथम शैतान ने हमारे प्रभु यीशु से कहा, इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यह अपील या निवेदन शरीर के लिए था, जैसे वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा था। तब शैतान ने प्रभु यीशु को संसार के वैभव दिखाए और उसे देने के लिए कहा, और यहाँ पर यह निवेदन मन या मस्तिष्क के लिए था, जिस प्रकार पेड़ आंखों के लिए लुभावना था। और अंत में उसने कहा कि अपने आप को मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा दे, और यह निवेदन मनुष्य के आत्मिक क्षेत्र के लिए था, जिस प्रकार पेड़ का फल बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य था। मित्रों, मैं नहीं समझता कि शैतान ने आज अपने तरीके बदल लिए हैं। आज वह उसी तरीके को आपके और मेरे लिए प्रयोग करता है, और आज उसी तरीके को प्रयोग में लाने का कारण यह है कि उसके पुराने तरीके आज भी उसी प्रकार से कार्यरत हैं और प्रभावशाली हैं। इसलिए उसे आपके तरीकों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है हम सब उसी तरीके में गिरने के लिए तैयार हैं। संत यूहन्ना ने पहली यूहन्ना की पत्री उसका 2:16 में लिखा है, क्योंकि वह सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा वृक्ष का फल है जो खाने के लिए अच्छा था, और आंखों की लालसा वह वृक्ष आंखों के लिए लुभावना था। जीवन का अहंकार वृक्ष बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य था। ये सारी वस्तुएं पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह शरीर के पाप मनुष्य के हृदय की गहराइयों से निकलते हैं। यही वह स्थान है जहां शैतान अपने निवेदन को रखता है, और यही उसका नियम है जिसे वह प्रयोग करता है ताकि वह अंदर पहुंचे और मनुष्य को भटका दे या परमेश्वर से दूर ले जाए, और वह सफल भी हुआ है। आदम और हवा को यह बताया गया कि वे भले और बुरे को नहीं जानते हैं, और तब क्या हुआ? अब हमारे पास मनुष्य के पाप में गिरने का परिणाम है। आइए हम सब उत्पत्ति 3:7 को पढ़ें। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि हम तो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। और तब उन दोनों की आंखें खुल गई, यह उनके विवेक को दर्शाता है। पाप में गिरने से पहले मनुष्य के पास विवेक नहीं था, वह निष्कलंक था। निष्कलंकता पाप से अज्ञानता है। मनुष्य ने विवेक को नहीं बनाया, यह एक दोष लगाने वाला है जो हम सबके पास है और हमारे अंदर में रह रहा है। एक नामी मनोवैज्ञानिक जो दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में थे, जो एक मसीही थे, उसने कहा कि पाप की मनोग्रंथि मनुष्य का एक भाग है और वह इतना बड़ा है जितना मनुष्य का दाहिना हाथ। और मनुष्य पाप मनोग्रंथि से मनोवैज्ञानिक तरीके से छुटकारा नहीं पा सकता। और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। मित्रों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सिर्फ अंजीर के पेड़ का ही विशेष रूप से नाम आया है? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष एक निवेदन पेड़ नहीं है। मैं नहीं जानता कि यह क्या था, लेकिन मैं लगभग इतना जानता हूं कि यह निवेदन वाला पेड़ नहीं था। ये अंजीर के पत्ते उन्हें अप्रकट तो किए, परंतु वास्तव में उन्हें छिपा नहीं सके। आदम और हवा ने अपनी गलती को सही स्वीकारा, परंतु वे अपनी पाप को छिपाने की कोशिश की। वे अपनी खोई हुई स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आज मनुष्य की परिस्थिति धर्म के मामले में वैसी ही है। वो आज भी धार्मिक परंपरा में से होकर जाता है, वह कलीसिया से जुड़ता है और वह धार्मिक बन जाता है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्रापित किया? और यह रुचिदायक बात है कि तुरंत बाद उसने उनके व्यवहार की निंदा की, क्योंकि धर्म केवल पाप को ढकती है। मित्रों, इस परीक्षा में शैतान मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर के बीच आना चाहता था। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह मनुष्य को परमेश्वर से अलग करना चाहता था और मनुष्य को अपने लिए जीतना चाहता था, और वह मनुष्य का ईश्वर बनना चाहता था। मित्रों, किसी भी रीति से शरीर की परीक्षा उस दिन मनुष्य के सामने अपील नहीं करनी चाहिए थी। वह चोरी करने या झूठ बोलने या लोभ करने की परीक्षा में नहीं पड़ा, परंतु वह परमेश्वर पर संदेह करने की परीक्षा में पड़ा। उस धनी जवान व्यवस्थापक की क्या समस्या थी? वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मित्रों, शैतान के नियम और तरीकों पर गौर कीजिए। पहली बात, हवा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। दूसरी बात, यह आंखों के लिए लुभावना था। और तीसरी बात, बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य था। शैतान बाहर से अंदर की ओर और मन के अंदर में बाहर से काम करता है, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय से आरंभ करता है, और कभी कभी हमारे धर्म के काम बाहर से रगड़ने जैसे हैं। लेकिन परमेश्वर बाहर से रगड़ने जैसे आरंभ नहीं करता। मित्रों, मैं यहां पर एक अंतर बताना चाहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है, परंतु मसीहत मसीह है। इस संसार में बहुत सारे विचार या धाराएं हैं, परंतु प्रभु यीशु शीर्ष उद्गम स्थान पर पाए जाते हैं जब उसने यह कहा नया जन्म का होना आवश्यक है। उसने उन फरीसियों से कहा जो धर्म गुरु थे और बाहर से वे बहुत धार्मिक लगते थे कि कठोते को अंदर से साफ रखो, तुम तो एक चुना फिरी हुई कब्र हो जो बाहर से चिकना और फूलों से भरा है, परंतु अंदर से मनुष्यों की हड्डियों से भरा पड़ा है। वाह, क्या दृश्य है! आदम और हवा अपने पापों को स्वीकार करने के बदले अंजीर के पत्ते को जोड़ रहे हैं, अपने तन को ढक रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी उसी अंजीर के पत्ती की बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि मनुष्य आज भी कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, भले कार्यों को करते हैं, जबकि उन्हें अपने हृदय के पापों के लिए पश्चाताप करना और क्षमा मांगना चाहिए था, लेकिन इसे छोड़कर वे भले कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे आदम और हवा छिपने के कार्य में व्यस्त थे। हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, फिर उन्हें दिन के ठंडे समय वाटिका में यहोवा परमेश्वर के चलने का शब्द सुनाई दिया और यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से आदम तथा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मित्रों, हमारे कार्य या धर्म हमें परमेश्वर से दूर करते हैं और आदम के साथ भी ऐसा ही हुआ, वह खो गया। जी हाँ, आदम खो गया और यह परमेश्वर है जो उसे ढूंढ रहा है और मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। आइए हम आगे उत्पत्ति 3 अध्याय के 10 से 12 पद को पढ़ें। उसने कहा, वाटिका में तेरी वाणी को सुनकर मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, अतः मैं छिप गया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष में से खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने उसमें से खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मित्रों, इस पद में हम पाते हैं कि आदम ने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया और यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उसने सारा दोष स्त्री को दे दिया, या हम बोलचाल की भाषा में कहें, वह बच गया, लेकिन उसकी तरफ से पापों का पश्चाताप या स्वीकृति नहीं है। मित्रों, हम इस अध्याय के आखिरी वचन उत्पत्ति 3:13 पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने खाया। यहाँ पर भी हम किसी तरह बचने की बात को पाते हैं। इसने भी सीधे रूप में अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। मित्रों, आज के अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले अध्ययन में इसके आगे के भाग को देखेंगे। तब तक आप इस पर अपना विचार अवश्य लगाते रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।